नमाज नबी बुक में से आज हम जिस चैप्टर पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ये है औकात नमाज, नमाजों के वक्त। बड़ा अहम टॉपिक है। हम देखते हैं कि इसमें नमाजों के औकात के बारे में हमें क्या बात मालूम हुई। पहली चीज़ इस चैप्टर से जो हमने सीखी वो क्या है, नमाजों के वक्त, किन वक्तों में अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ते थे। मौजू चुके हैं मैं तो मैं पूरी हदीस आपके सामने रखूँगी। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औकात पूछे। आपने फरमाया इन 2 दिनों में हमारे साथ नमाज पढ़ो। यानी एक दिन, पहले दिन आपने इब्तदाई वक्तों में पढ़ाई, अगले दिन इंतहाई वक्तों में पढ़ाई, कहा इन 2 वक्तों में पढ़ो। क्या, अब सुनिएगा आप भी। जब सूरज का जवाल हुआ तो आपने बिलाल को जोहर की अजान देने का हुक्म दिया, असर की नमाज का हुक्म दिया जब सूरज बुलंद सफ़ेद और साफ था, मगरिब की नमाज का हुक्म दिया जब सूरज गुरूब हुआ, इशा की नमाज का हुक्म दिया जब सुर्खी गायब हुई, और फजर की नमाज का हुक्म दिया जब फजर तुलू हुई। यानी 5ों नमाजों को इनके अव्वल वक्तों में पढ़ाया। दूसरे दिन बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को हुक्म दिया कि जोहर की नमाज अच्छी तरह ठंडी करके यानी देर करके, और असर की नमाज पढ़ी जब सूरज बुलंद था, और इस अव्वल वक्त से ताखीर की जो उसके लिए पहले दिन था। मगरिब की नमाज शफक यानी सूरज की सुर्खी गायब होने से पहले पढ़ी, और ईशा की नमाज 1/3 रात गुजरने पर पढ़ी, फजर की नमाज सुबह रोशन करके पढ़ी। यानी नमाजों को इनके आखिरी वक्त में पढ़ाया और फरमाया तुम्हारी नमाज के औकात इन 2 वक्तों के दरमियान है जिनको तुमने देखा, और यही वो 2 वक्त है कि जिन पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को नमाज़ें पढ़ाई थी। सीरत में आप देखेंगे इसको कि जब नमाज फ़र्ज हुई तो उसके अगले ही दिन से जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों दिन आते रहे। पहले दिन आपको इब्तदाई वक्तों पर पढ़ाई, और दूसरे दिन नमाज का जो इंतहाई वक्त है उस पर पढ़ाई, और फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए नमाजों के वक्त जो हैं इनके बीच में है। सारी बातों को जमा करें तो पता क्या चला, फजर कब होती है, जब दिन बिल्कुल अभी खुला भी नहीं, अंधेरा सा जैसे शुरू होता है सुबह रोशन करने से पहले के वक्त में, सुर्खी गायब हुई, और फजर की नमाज आपने जब सुबह फजर का वक्त हुआ, तुलू का वक्त, और दूसरे दिन आपको कब पढ़ाई, जब सुबह रोशन हो गई यानी सूरज निकलने से पहले का वक्त। यही है वक्त, बेहतरीन काम क्या है, इब्तदाई वक्त में पढ़ना, बअम्र मजबूरी आखिरी वक्त तक पढ़ी जा सकती है। इसका ये नहीं मतलब कि शुरू वक्त हो जाए तो ना पढ़ें कि अभी हमारी नमाज का वक्त नहीं हुआ। ये दोनों वक्तों को मैं इस तरह से समझती हूँ जैसे आपको कोई बिल मिलता है बिजली का जमा कराना है, आपको आज मिला, डेट पढ़ते हैं आखिरी डेट के, उसमें 1 हफ्ते बाद की है, आज से लेके 1 हफ्ते के अंदर आप बिल जमा करा सकते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि सिर्फ आखिरी दिन जाके आप लाइन में खड़े होंगे, पहले करा लेंगे तो बेहतर है ना। इसी तरह नमाज के बारे में हुक्म क्या है कि जब वक्त आ जाए ना तो फिर आपकी नमाज का वक्त शुरू हो गया। हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि कुछ लोग अजाने सुनते रहते हैं और साथ कहते हैं नहीं अभी हमारी मस्जिद का वक्त नहीं हुआ, अभी हमारी नमाज का वक्त नहीं हुआ। ये फ़र्क दोनों में यही है, एक इब्तदाई नमाज और एक इंतहाई, और उस वक्त असर पढ़ते हैं जब बिल्कुल दिन जाने वाला होता है। तो लिहाजा ये जो वक्त है इनके बीच में नमाज पढ़ी जा सकती है। जोहर की नमाज का मैं ज़रूर शुबा दूर करना चाहूँगी। हमारे यहाँ एक मारूफ बात होती है कि जोहर की अजान हुई है, बस इसके 1-1.5-2 घंटे के बाद नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, और ज़रा 3 से 4 बजते हैं तो लोग कहते हैं अब नमाज कज़ा हो गई है, और कज़ा भी कैसी हुई है कि अगले दिन जोहर के साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए पसंदीदा अमल तो ये कि जोहर का वक्त हुआ है तो पढ़ लें, लेकिन जोहर से लेके असर की नमाज तक जितना वक्त है वो जोहर का वक्त है, आप उसके बीच में पूरी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह असर की नमाज शुरू हुई पढ़ें, साय का ताल्लुक होता है जब जिस्म का साया बराबर हो, फिर डबल हो, फिर उससे मतलब दुगना हो जाए, तो जब वक्त शुरू हो जाए उसके बाद डिले नहीं करना चाहिए। और इससे हमने ये भी देखा कि जोहर की नमाज थोड़ी देर से पढ़नी पसंदीदा है, इसी तरह ईशा की नमाज भी थोड़ी देर से पढ़नी पसंदीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत की सख्ती का या उनके मुश्किल में पढ़ने का डर ना होता तो मैं ईशा की नमाज और लेट कर देता, यानी बिल्कुल सोने से पहले के वक्त में। फिर अगली चीज़ हमने इस चैप्टर में सीखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद में जाती थीं और अपनी चादरों में लिपटी होती, कि अंधेरे की वजह से कोई उनको पहचानता भी नहीं था। अगली बात हमने सीखी कि फजर की नमाज़ सुबह सूरज निकलने से पहले तक पढ़ी जा सकती है, लेकिन पसंदीदा अमल क्या है कि इब्तदाई हिस्से में पढ़ी जाए। अगली बात हमने इसमें सीखी कि अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई नमाज आखिरी वक्त में नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हुआ और हम अपने आप को ही देख लें, शर्मिंदगी है ना, कि हम पढ़ते ही तब हैं जब आखिरी वक्त हो जाएगा, बस अब जान छुड़ानी है, अब पढ़ लें। सारी ज़िंदगी आपने कभी भी लेट नमाज नहीं पढ़ी, आप ये कह लें। अगली बात हमने देखी कि गर्मियों और सर्द मौसम में नमाज़े जोहर के वक्त में कुछ कमी होती है। गर्मियों में जोहर आपने थोड़ी देर से पढ़ाई और सर्दियों में वक्त पे पढ़ाई। आपने फरमाया कि जब गर्मी सख्त हो तो नमाज़े जोहर ठंडे वक्त पर पढ़ो, और ये रिवायत कितनी खूबसूरत है ना, कि एक मर्तबा गर्मी में हज़रत बिलाल ने जोहर की अज़ान देनी चाही तो आपने फरमाया, ठंडा हो जाने दो, ठहर जाओ, गर्मी की शिद्दत जहन्नुम के जोश से है, गर्मी की शिद्दत में इस वक्त तक ठहरो कि टीलों के साए नज़र आने लगे। अगली चीज़ हमने इस हिस्से में सीखी कि ख़ास तौर पे असर की नमाज़ बहुत जल्दी पढ़ लेनी चाहिए। अगली बात इसमें हमने देखी जुमे की नमाज़ का वक्त, जुमा कब होता, जब सूरज ढल जाता। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी कि जुमे की नमाज़ सर्दियों में अल्लाह के नबी जल्द पढ़ते थे और गर्मी के मौसम में देर से पढ़ते थे। ये वक्त की बात है, इस पे आगे जाके इंशाल्लाह मसाइल अगले एक पूरे टॉपिक में आएंगे। अगली बात कि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद इतना वक्त बच जाता था कि जिसमें कोई ऊँट को ज़िबह करे, फिर उसके गोश्त को पकाए और खा ले, और उस दौर में कोई प्रेशर कुकर्स नहीं थे, यानी असर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद इतना वक्त ना हो कि मग़रिब हो जाए, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ असर की नमाज़ लेट पढ़ी जाती है। फिर अगली बात हमने सीखी कि मुनाफिक असर की नमाज़ के लिए कैसे, कि वो सूरज के ज़र्द होने का इंतज़ार करता है, यहाँ तक कि जब वो ज़र्द हो जाए और शैतान के दो सींगों के दरमियान हो जाए तो वो नमाज के लिए खड़ा होता है और चार ठोंगे मारता है, और इसमें अल्लाह का जिक्र कम करता है। ज़ाहिर है जब नमाज को देर हो रही होगी तो फिर जिक्र कहाँ होगा, फिर तो मुख्तसर सी बात करके ही इंसान आगे चलेगा। फिर इसी तरह मग़रिब की नमाज के लिए हमने सीखा कि सूरज गुरूब होते ही अल्लाह के नबी मग़रिब की नमाज अदा कर लेते थे, और ईशा की नमाज पसंदीदा ये है कि देर से पढ़ी जाए। अगली बात हमने सीखी कि अल्लाह के नबी ये पसंद नहीं करते थे कि ईशा की नमाज से पहले सोया जाए और ईशा की नमाज के बाद बातें की जाएं। हमारी सारी पार्टियां ईशा के बाद शुरू होती हैं और आधी रात तक। अगली चीज़ हमने सीखी कि अगर कभी हाकिम ही देर से पढ़ाएं तो क्या किया जाए, ये मसला अहम था, यानी जो मस्जिदों के इमाम हैं अगर वो देर से पढ़ाएं तो क्या किया जाए। तो आपने फरमाया कि तुम अपने वक्त पर नमाज़ को पढ़ लो, घर पे पढ़ लो, फिर उसके बाद जमात के साथ जाके दोबारा पढ़ लो तो एक नमाज तुम्हारे लिए नफिल हो जाएगी। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको नमाज का गम होता है, वो वक्त पे फिर पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मस्जिद में वक्त हुआ फिर वहाँ जाके भी पढ़ी, ये नहीं कि फिर मस्जिद की छोड़ दो, झगड़े शुरू कर दो, वहाँ जाके भी पढ़ लो, एक को अल्लाह ताला नफिल कर देगा। और अगली बात कि अल्लाह के नबी ने इस बात की खबर दे दी थी कि मेरे बाद ऐसे इमाम पैदा होंगे जिनको बास चीज़ें वक्त पर नमाज पढ़ने से रोकेंगी, यहाँ तक कि इसका वक्त जाता रहेगा, बस नमाज वक्त पर पढ़ो अगरचे तनहा पढ़नी पड़े। एक शख्स बोला, अल्लाह के नबी मैं इनके साथ भी नमाज़ पढ़ूँ, तो आपने फरमाया कि हाँ, यानी इसका हुक्म समझ में आ गया कि अगर किसी जगह है ही ऐसी मस्जिद जो बड़ी देर से पढ़ते हैं तो फिर क्या करें, आप अपने वक्त पे पढ़ लें घर में और उसके बाद उनके साथ दोबारा जाके पढ़ें। अगली चीज़ हमने इस हिस्से में सीखी कि सुबह फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद नफिल नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों? इसलिए कि इन वक्तों में शैतान बिल्कुल सूरज के सामने खड़ा हो जाता है, सूरज जो है वो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान होता है, ऐसे वक्त में जब हम सजदा करते हैं ना तो वो असल में शैतान को सजदा हो जाता है, और ये वो वक्त है जब मुशरिक कौमें सूरज को सजदे के लिए ऐसे वक्तों में नमाज पढ़ती थी, यानी सूरज की तरफ सजदा करते हैं और उससे फिर शैतान को भी सजदा होने का एक इहतमाल होता है। फिर अगली चीज़ कि असर की नमाज के बाद कोई सुन्नत पढ़ी जा सकती है कि नहीं, नहीं पढ़ी जा सकती, गो कि इसमें इख्तलाफ है, लेकिन फर्ज नमाज तो पढ़ी जा सकती है उसके बाद, लेकिन नफिल नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह अगली बात कि जिसकी कोई नमाज रह जाए, फौतशुदा नमाजें, जब वो भूल जाए या सो जाए तो इसका कफारा क्या है कि जिस वक्त याद आए उस नमाज को पढ़ ले। पिछली छुटी हुई नमाजों को पढ़ने की जो बात है उसको हमारे यहाँ एक मारूफ टर्म दी जाती है, कज़ाए उम्री। और कज़ाए उम्री का मसला जो है वो इस तरह से पेश किया जाता है कि पिछली छुटी हुई नमाजों को काउंट करो और गिन गिन के अदा करो, और बाज़ दफ़ा फिर इंसान पिछली ज़िंदगी की नमाजों को जमा करते हैं। तो इस बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने रख देती हूँ, इसी चैप्टर में भी कुछ बातें हैं, लेकिन हुक्म यह है कि नमाज जो है अल्लाह ताला के साथ कुर्ब और उससे ताल्लुक का ज़रिया बनती है। आप पिछले 10 साल से इस कुर्ब को हासिल नहीं कर सके, कभी करते थे कभी नहीं करते, अब वो वक्त गुजर गया, आपको याद ही नहीं, कभी पढ़ी थी कभी नहीं, किसी दिन दो पढ़ी किसी दिन चार पढ़ी, वो जो उसका मकसद हासिल होना था ना अल्लाह का कुर्ब, वो तो ख़त्म हो गया ना। अब रह गया मसला कि क्या फिर उन नमाजों को भी अदा करें कि ना करें। तो इसके बारे में इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला फरमाते हैं, एक शख्स कुफर से इस्लाम की तरफ तौबा करता है तो उसकी तौबा उसके लिए रहमत बन जाती है। कैसे? पिछली नमाजें माफ़ हो गई। किसी काफिर को हम ये तो नहीं कहते कि आज 25 साल की उम्र में मुसलमान हो रहे हो तो 10 से लेके 25 के 15 साल की नमाजें तुम अदा करो, कोई भी नहीं कहता ना, माफ़ी है, तौबा जो है गुनाहों को माफ़ करती है। तो कहते हैं कि जब एक काफिर के लिए तौबा रहमत बन गई, सोचने की बात है, तौबा रहमत बन गई कि उसके 15 साल की नमाजें माफ़ हो गई, तो जब एक मुसलमान तौबा करे तो उसकी तौबा उसके लिए जहमत क्यों बन जाए। तो लिहाजा एक ये दलील। दूसरी दलील पीरियड्स पे, एक औरत की जब पीरियड्स में नमाजें छूटती हैं तो उसको दोबारा अदा नहीं किया जाता, जबकि छुटे हुए रोज़ों को अदा किया जाता है, यही कानून इधर है। शौर बेशौरी में, गफलत में, नासमझी में, शिद्दत का एहसास ना होने की वजह से पिछली ज़िंदगी में अगर नमाजें छूट चुकी हैं तो सच्चे दिल से पहली बात है तौबा करें, दूसरी बात है कसरत से सुन्नतों और नफलों पे पाबंदी करें, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल पढ़ें, इंशाल्लाह इनसे अल्लाह ताला उस कमी को पूरा कर लेगा। और अगली बात है कि आइंदा फिर नमाज ना छोड़े तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पिछली माफ़ कर देगा। ये तो है उन नमाजों का मसला जो हमें याद ही नहीं, अब कभी पढ़ी कभी नहीं। दूसरी बात है अब पता है शऊर में सो गए, आंख नहीं खुली, नियत भी थी इरादा भी था, उठे रिग्रेट हुआ, फौरन वजू करें पूरी नमाज पढ़ें। आपने फरमाया कि सो जाए या भूल जाए तो फौरन अदा करें, अब इसमें क्या है कि अगले दिन फजर के साथ पढ़ेंगे, किसको पता है आपने अगले दिन जिंदा रहना है, अगले दिन जोहर के साथ आज की जोहर पढ़ेंगे, नहीं फौरन पढ़ें, फिर अब कोई गुंजाइश नहीं, जब छूटे फौरन। अब ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सोचें कि अच्छा पिछले हफ्ते पढ़ी थी और अभी तक नहीं पढ़ी, तो लिहाजा जिन नमाजों का तो डेफिनेट पता है कि हमने ये नहीं पढ़ी थी उसको आप अदा करेंगे, किसी मुगालते की वजह से नहीं पढ़ी, किसी प्रॉब्लम से नहीं पढ़ी, लेकिन इसके अलावा जिन नमाजों का श्योर नहीं उसमें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहमत रखी है। इसमें एक बड़ा प्यारा वाक्या है जिसमें आपको देखेगा कि अल्लाह के नबी ने नमाज कैसे अदा करी थी। अबू कतादा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक सफ़र में फरमाया, आज रात कौन हमारी हिफाजत करेगा, ऐसा ना हो कि हम फजर की नमाज को ना जागें। हज़रत बिलाल ने कहा कि मैं ख्याल रखूंगा, फिर उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह किया और कुछ देर बाद बिलाल भी गाफिल होकर सो रहे, सारे दिन के थके हुए थे नींद आ गई, सो गए वो भी। जब सूरज गर्म हुआ तो जागे और उठ खड़े हुए, रसूलुल्लाह और सहाबा भी जागे। आपने फरमाया ऊंट की नुकेल पकड़ कर चलो क्योंकि ये शैतान की जगह है, वहाँ सब गाफिल होकर सो गए थे ना। फिर नई जगह पहुँच कर आपने वजू किया, बिलाल ने अजान दी, आपने 2 रकतें पढ़ी, बाकी लोगों ने भी 2 सुन्नतें पढ़ी, फिर आपने फजर की नमाज पढ़ाई और फरमाया जो शख्स भूल जाए उसे जब याद आए तो नमाज पढ़ ले। ठीक है, तो सुन्नतें भी पढ़ी जाएंगी और फर्ज भी पूरे पढ़े जाएंगे, और ये है फौरी उसी वक्त के उसके कज़ा की बात है। अगली चीज़ जो हमने इस हिस्से में सीखी है सफ़र के दौरान अगर कोई शख्स कहीं पड़ाव डाले तो पहले अज़ान दे फिर नमाज़ पढ़े। और मैंने ये अमल करते हुए कई दफ़ा अपने मियाँ को देखा है कि इवन एयरपोर्ट्स पे या वीरानों पे जहाँ भी होते हैं ये पहले अज़ान देते हैं। हदीस बड़ी प्यारी है, आपको सुना देती हूँ। उकबा बिन आमिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा परवरदिगार बकरियां चराने वाले से ताज्जुब करता है। यानी अल्लाह ताला ताज्जुब करते हैं उस बंदे पे जो पहाड़ की चोटी पर रहकर अजान देता है और नमाज पढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे को देखो जो नमाज के लिए अजान देता है और इकामत कहता है और मुझसे डरता है, मैंने इसको बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह के नाम बुलंद करने चाहिए। होटलों में आप रहते हैं, आप अपने कमरे में अजान दे, किसी के घर आप मेहमान गए हैं, अब वो उठ के जमात के लिए नहीं जा रहे तो आप जाके नीचे लाउंज में सुबह अजान दीजिए, क्योंकि मुसलमान जगहों से अल्लाह का नाम उठना चाहिए और वहां से फिर ऐसी आवाजें होंगी तो इंशाल्लाह शैतान जो है वो दूर होंगे। तो इससे पता चला कि अगर कोई इंसान अकेला भी हो तो वो भी अजान देगा और फिर नियत करके खड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको जमात की सवाब देगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा शख्स होता तो फिर खुद ब खुद उसके पीछे नमाज पढ़ता। तो इस तरह बाज़ दफ़ा बंदा एक अकेला नमाज पढ़ने के बावजूद भी जमात का अजर पा लेता है। फिर इसके बाद अगली चीज़ हमने देखी कि अगर कोई नमाज कज़ा होती है तो उसको कैसे दूसरी के साथ मिलाया जाए। मसलन आपकी जोहर चली गई, अब आप असर पढ़ रहे हैं, या मगरिब चली गई और इशा पढ़ रहे हैं, तो पहले कौन सी पढ़ी जाएगी? तो तरतीब रखी जाएगी। किसी सख्त मजबूरी में अगर कोई नमाज चली जाए तो पहली नमाज पहले पढ़ी जाएगी और दूसरी नमाज उसके बाद, यानी जोहर पहले पढ़ी जाएगी, फिर असर पढ़ी जाएगी, फिर मगरिब और फिर इशा। यही तरतीब जो है इसमें आती है। तो लिहाजा आप देखिए कि नमाज वक्त पे है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नमाज़ों को उसके पूरे वक्त पे अदा कर सकें।